सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर श्रीकांत आपके साथ MH935 लेकर. एंड आज MH935 पर 26th ऑफ जनवरी,
इट्स आवर एनिवर्सरी ऑन 26th जनवरी.
ओके, बट 26 जनवरी को और क्या है, जरा सोचो.
26 जनवरी को अभी बहुत कुछ हो सकता है.
मतलब
चाहे तो हम लोहगढ़ चढ़ सकते हैं, वहाँ पे जाके इंडिया का फ्लैग लगाते थे हम कॉलेज टाइम पे, तो ऐसा कुछ करने का सोचा है इस बार. देखते हैं, सब लोग अगर मिलते हैं, सब फ्रेंड्स मिलते हैं तो वहाँ पे जाएंगे हम.
सेलिब्रेट क्या करते हैं हम 26 जान को?
ये आवाज है हमारे MH935 के प्रोड्यूसर साहिबा पूजा जुर्मानिया, यानी कि पीजे की.
उतना तो आइडिया नहीं. सब लोग करते इसलिए करते हम.
गणतंत्र दिवस, इंग्लिश में रिपब्लिक डे, मराठी में प्रजासत्ताक दिन. इंडिया का 69वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं. पीजे उतरी थी पुणे के सड़कों पर ये परखने कि हम जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं उसके बारे में एक्चुअली जानते कितना है.
कॉन्स्टिट्यूशन जब एक्ट हुआ था 26 जब जनवरी को हुआ था, इसलिए हम उसको गणतंत्र दिवस कहते हैं.
एक्चुअली कैसा रहता, हमारे गांव में एक छोटा सा स्कूल है. ओके, तो सुबह सब लोग उधर जमा होते हैं, उधर सब फ्लैग वगैरह लगा के उसको ए करते हैं.
एंड पुणे की सड़कों पे पीजे को मिले जीशान, कुमार, रोहन, आतिश और अभिजीत. सबके सब काफी अच्छे पढ़े लिखे हैं. बाय द वे,
सॉफ्टवेयर का बिजनेस है मेरा.
मैं सिविल इंजीनियर हूं, एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर जॉब कर रहा हूं
अभी. एक्चुअली हम इंजीनियर, आईटी इंजीनियर.
तो भाई लोग, ये गणतंत्र का मतलब क्या होता है?
गणतंत्र मतलब लोगों का राज्य, जैसा लोगों को आजादी रहती है कि कुछ भी, मतलब उनके जैसे करने के.
गणतंत्र मतलब एक जो हमारा देश है वर्सेटाइल, उसमें रीजन्स है, उनको एक लाइन में बांधने के लिए जो लॉ है उसके हिसाब से.
ओके, फिर वो 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है रिपब्लिक डे?
इंडिपेंडेंस, अपना मतलब अपने कंट्री को, मतलब एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने कंट्री में एक जो नया इन्वेंशन किया है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी कंट्री के लिए, जिसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे.
जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिया में थोड़ी खुशहाली आई.
okay.
इस दिन पे सब रीजन के लोग एक साथ आए पहली बार, या फिर सब लोग पहले कैसे अलग अलग रहते थे, तो इसी डे को अच्छे से मनाते हैं लोग, क्योंकि सब लोग एक साथ आए, जो कि आजकल होना चाहिए जो नहीं होता.
हाँ, लेकिन 26 जनवरी को क्यों, कोई और दिन क्यों नहीं?
15 अगस्त हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिला था, उसके बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया, सो वो डेट है 26 जनवरी.
एक्चुअली 15 अगस्त ऑलरेडी हमको फ्रीडम मिला था, तो उसके बाद हमने मतलब वो लोकशाही बोलते है ना, तो उस दिन लोकशाही को डेमोक्रेसी उस दिन बननी थी.
15 अगस्त इज आवर इंडिपेंडेंट डे एंड 26 जनवरी इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल डे, सो दिस इज द रीजन व्हाई दे हैव डिसाइडेड ऑन 26 जनवरी.
भाई लोग, ये सारे ख्याल नेक है लेकिन एकदम टोटली फेक है.
लाहोर कांग्रेस मध्ये 31 डिसेंबर 1929 ला संपूर्ण स्वराज्याचा ठराव मंजूर झाला. गांधीजींनी 26 जानेवारी 1930 हा स्वातंत्र्य दिन जाहीर केला असल्यामुळे कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीने घटना तयार करताना त्याच्यामध्ये 26 जानेवारी 1950 पासून ही घटना अंमलात यावी असं कलम घातलं, आणि त्यामुळे 26 जानेवारी 1950 ला आपण प्रजासत्ताक झालो.
रिपब्लिक डे का हमें अभिमान है, गर्व है, लेकिन स्कूल में जो पढ़ा वो इस उम्र में कौन याद रखेगा यार, अनलेस यू आर अ लॉयर और अ जज, एंड हमको तो दोनों मिल गए.
नमस्कार आपल्या सर्व श्रोत्यांना गणतंत्र दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा.
जस्टिस RC चव्हाण एक रिटायर्ड जज हैं जो बॉम्बे हाईकोर्ट के पहले रजिस्ट्रार जनरल बने थे एंड महाराष्ट्र राज्य के कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं. कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में महारत हासिल है उन्हें. हमने उनसे पूछा कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों होता है.
गांधी जी ने 26 जनवरी को हम स्वतंत्र हुए ऐसी घोषणा की थी लाहौर कांग्रेस में, इसलिए 26 जनवरी 1950 ये तय हुआ कि उस दिन से हम गणतंत्र बनेंगे.
इसीलिए हमने 26 जनवरी को चुना प्रजासत्ताक बनने के लिए. बाय द वे, प्रजासत्ताक बनने का मतलब ये नहीं कि हम ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी बन जाए. हाँ,
प्रजासत्ताक ये लोकशाही का होगा ही ऐसा नहीं, जैसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो लोग भी रिपब्लिक कहते हैं लेकिन वहाँ कोई डेमोक्रेसी है नहीं. इतना ही फर्क है कि वहाँ कोई राजा नहीं है. रिपब्लिक भी है, प्रजासत्ताक भी है, लोकशाही भी है हमारे यहाँ है.
अब सवाल ये है कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक अगर संविधान नहीं था तो क्या था? क्या हम बेकायदा थे? Were we a lawless state?
No. We were not a lawless state.
हम एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन थे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के अंडर में, जिसके हेड थे किंग जॉर्ज 6.
INBA, इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन के चेयरमैन जमीर नथानी.
लेकिन हम एक फुल्ली सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट थे.
वो जो 1935 का कानून था वो ब्रिटिश संसद ने पास किया था, तो भारत को स्वतंत्र प्राप्त की, लेकिन भारत उस समय भी अंग्रेजी हुकूमत का एक डोमिनियन स्टेट था.
और ये बनाया गया था उस दरमियान के कानून के अंदर, जो कानून का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947.
संविधान बनाते समय संविधान के अनुच्छेद 1795 के अनुसार ये जो दोनों एक्ट थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के वो रिपील किए गए। हमने ऐसा माना कि ब्रिटिश संसद को अपने बारे में, भारत के बारे में कोई एक्ट बनाना ये मुमकिन नहीं है, हम स्वतंत्र हो गए पूरी तरफ से।
सो एसेंशियली 1947 से लेके 1950 तक सारे के सारे अंग्रेज नोटिस पीरियड पे थे एंड हम उनसे हैंडओवर ले रहे थे एंड इस हैंडओवर के बाद एक्चुअली कामकाज की शुरुआत हुई।
चल हट नटखट।
26 जनवरी को भारत का संविधान, भारत की राज्य घटना स्वीकारने के जश्न में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन इस संविधान के बारे में जानते कितना है? हमने लोगों से पूछा।
कॉन्स्टिट्यूशन के पहले के तीन शब्द
सत्यमेव जयते।
मुझे इतना पता है कि सिर्फ बना है किसने, आगे का कुछ नहीं पता मुझे।
स्वदेश नाम की फिल्म जो थी शाहरुख की, उसका टैगलाइन यही तीन शब्द थे। अगर आपको ये तीन शब्द पता है तो मेरे फेसबुक पेज पर मुझे तुरंत मैसेज कर दो। मेरा फेसबुक पेज है RJ श्रीकांत रेड FM, RJ SHRIKANT RED FM, सर्च कर लो, मिल जाऊंगा मैं। कमिंग बैक ऑन ट्रैक, संविधान में एक्चुअली क्या है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे?
कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कंट्री में एक बहुत ही अच्छी चीज है जो कि हर किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है। अपनी कंट्री में जो आजादी है किसी और कंट्री में आपको नहीं मिलेगी, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ आवर कंट्री,
जिसमें हमारा राइट्स वगैरह सब लिखा हुआ है।
वेल, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है यस, बट संविधान का बस एक छोटा सा हिस्सा है, इफ आई मे सी सो। संविधान में क्या है, हमने पूछा हमारे एक्सपर्ट से, रिटायर्ड जस्टिस RC चव्हाण।
अपना संविधान देश के जो केंद्र सरकार यानी यूनियन और स्टेट, इनके विषय के बारे में तय करता है कि कौन से विषय में राज्य सरकार काम करेगा और कौन से विषय में केंद्र सरकार काम करेगा।
और INBA INBA इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन के चेयरमैन जमीर नथानी।
इट लेज डाउन फ्रेमवर्क डिफाइनिंग द फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, एस्टैब्लिशेस स्ट्रक्चर्स, प्रोसीजर्स, पावर्स एंड ड्यूटीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की क्या होती है। एंड
स्टेट के तीन फिगर्स है, न्याय व्यवस्था, विधान कार्य, एग्जीक्यूटिव। संविधान बताता है कि न्याय व्यवस्था ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पार्लियामेंट ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जैसे कार्यपालिका है, कार्यपालिका ने जो एग्जीक्यूट करने हैं एक्शन, लेजिस्लेचर ने पास किए हुए कानून के तहत काम करना है।
यानी कि एसेंशियली संविधान एक कलेक्शन है कई सारे जॉब डिस्क्रिप्शंस का और KRAs का फॉर वेरियस पीपल जो सरकार के लिए काम करते हैं।
मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट इज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री।
रिपब्लिक डे के अवसर पर संविधान के बारे में जो निरक्षरता है उसके खिलाफ हमने रेड FM पे जंग छेड़ी है, जिसमें हमारा साथ दे रहे हैं रिटायर्ड हाईकोर्ट जज RC चव्हाण एंड INBA INBA इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन के चेयरमैन जमीर नथानी। हमने दोनों से पूछा कि भारत के संविधान में ऐसा क्या खास है जो किसी और देश के संविधान में नहीं। रिटायर्ड जज RC चव्हाण का कहना है,
ऐसा तो नहीं कह सकते दूसरे कहीं नहीं है, जैसे अमेरिका में भी ये सब है, लेकिन आर्टिकल 14, 19 और 21 ये जो त्रयी है अपने संविधान का सबसे अच्छा पार्ट है। आर्टिकल 14 इज अबाउट इक्वालिटी, आर्टिकल 19 इज अबाउट फ्रीडम, एंड आर्टिकल 21 इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 32, संविधान के पार्ट 3 में जो कोई राइट दिए है उसका अगर भंग हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाने का प्रावधान इसमें है।
एंड जमीर नथानी कहते हैं,
द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द 9 फंडामेंटल राइट्स व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल द सिटीजंस।
हैविंग सेड दैट, अपना संविधान रिजिड नहीं है, इसमें आज तक 101 अमेंडमेंट्स हुए हैं। इसके बारे में रिटायर्ड हाईकोर्ट जज RC चव्हाण कहते हैं,
कोई भी संविधान रिजिड नहीं रह सकता, समय बदलते जाता है और समय के साथ डिमांड्स बदलते जाती है, समझ बदलते जाती है, सोच बदलते जाती है। जैसे राइट टू प्राइवेसी पहले तो नहीं था, अभी लेकिन इसकी जरूरत महसूस हो रही है।
एंड इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन के चेयरमैन जमीर नथानी का कहना है,
बहुत सारे अमेंडमेंट हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बिकॉज यू नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत सारी चीजें प्रिस्क्राइब करता है। स्मॉल एग्जांपल, देयर इज अ रिटायरमेंट एज ऑफ अ जज। नाउ इफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज दैट एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज दैट एज, यू नीड टू चेंज पार्ट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन।
लेकिन ये अमेंडमेंट्स कब किए जाते हैं, कौन करता है?
आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं, संविधान में अमेंडमेंट की सुविधा रखता है। अमेंडमेंट ये 2/3 बहुमत से ही हो सकती है, ऑर्डिनरी मेजोरिटी नहीं चलती, क्योंकि बेसिक डॉक्यूमेंट अमेंड करना है।
संविधान लिखने वाले लोगों में कितनी दूरदृष्टि थी, देखो संविधान बनाते वक्त ही उन्होंने जान लिया, पहचान लिया कि संविधान को बदलने की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए भी प्रावधान बना के रख दिया।
लाई भारी।
15 अगस्त को आजादी मिलने के बाद 28 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना हुई, जिसके चेयरमैन अपॉइंट हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 4 नवंबर 1949 को उनका ड्राफ्ट पूरा हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश हुआ, जिस पर विचार विनिमय हुआ। 24 जनवरी 1950 को उस पे दस्तखत किए 308 असेंबली मेंबर्स ने और 26 जनवरी से ये संविधान इस देश पे लागू हो गया। अपना संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। इसके 444 आर्टिकल्स 22 हिस्सों में हैं, जो 12 शेड्यूल्स में बटे हैं। और इस संविधान की कुछ खास बातें हमें बताई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स ने। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज आरसी चव्हाण।
पहली बात तो है सुप्रीमसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अपने यहाँ कोई प्रधानमंत्री सुप्रीम नहीं है, प्रेसिडेंट सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जजेस सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। दूसरा ऐसा है कि ये यूनिटरी फेडरेशन है, स्टेट्स भी है अपने यहाँ, लेकिन स्टेट्स पे यूनियन का कंट्रोल भी है, कोई ऐसा अलग हो नहीं सकता, हम सब एक है। तीसरी बात यह है कि बैलेंस ऑफ पावर बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है, कोई भी दूसरे को ओवर पावर नहीं कर सकता, एंड इट इज दैट बैलेंस ऑफ पावर व्हिच एंश्योर्स दैट वी कंटिन्यू एज अ डेमोक्रेसी।
इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन के चेयरमैन जमीर नथानी।
There is a writ of habeas corpus, which means if the arrested person is found that there is no ground, the person can be immediately left by the court. You know, these are the fundamental rights of the citizens which are guaranteed by the Indian Constitution, and this is the most unique and the powerful thing in the Indian Constitution. It overrides every other law.
ये सारी जानकारी पाकर मेरे मन में बस एक ही बात घूम रही है कि अगर अपना संविधान खुद अपने आप को फ्लेक्सिबल रख सकता है कि बदलते वक्त और समाज के साथ वो भी बदल सके, तो हम इंसान क्यों नहीं उससे कुछ सीख सकते। शायद इस 69th रिपब्लिक डे पर, 69वें गणतंत्र दिवस पर हमारे लाइफ के संविधान में एक आर्टिकल 169 लिखने की जरूरत हमको है। विद दैट थॉट, दिस इज श्रीकांत विशिंग यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे ऑन 93.5 रेड एफएम। MH935 नाम का है शो, बजाते रहो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।